कुछ लम्हे खामोशी से गुजरे। इनाया ना देख ले, यही सोचकर कायरव ने अपनी नजरें आसमान की तरफ घुमा ली। अगले ही पल इनाया की आवाज उसके कानों में पड़ी और वो बुरी तरह चौंक गया। कायरव, तुम्हारे माथे पर ये निशान कैसा है? कभी चोट लगी थी क्या तुम्हें यहाँ? कायरव ने हैरानी से सर घुमाया। इनाया चेहरे पर गंभीर भाव लिए उसे ही देख रही थी। हवा से उसके बाल बिखर गए थे और एक बार फिर माथे पर साइड में मौजूद वो निशान दिखने लगा था जो अक्सर बालों के पीछे छुप जाया करता था। कायरव की उंगलियां अनायास ही उस जख्म पर जाकर ठहरीं। चेहरे पर एक काला साया सा मंडराने लगा। पर उस वक्त यहां से गहरी चोट यहां लगी थी। कायरव ने अपने दिल पर उंगली रख दी। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और नजरें इनाया के चेहरे पर टिकी थीं, जिस पर चिंता, परेशानी और परवाह साफ दिख रही थी। फिर तो तुम्हारे सीने पर भी ऐसा निशान होगा ना? नहीं, वहां निशान नहीं है, पर जख्म आज भी उतना ही ताजा है और रह रहकर उसमें टीस भी उठती है। इनाया असमंजस सी आंखें बड़ी बड़ी किए उसे तकने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? कायरव ने उसकी नजरों को खुद पर टिके देखकर भौहें उछाली। इनाया ने झट से सर हिलाया और कन्फ्यूज सी बोली, नहीं कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? हर जख्म दिखा नहीं करते, कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं जो किसी को नजर नहीं आते, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द वही देते हैं जो इतने गहरे होते हैं कि वक्त के साथ भरने की जगह नासूर बनते जाते हैं और वक्त वक्त पर उनमें टीस उठती है जो अपने होने का एहसास कराती है। इनाया एकटक उसे देखने लगी। कायरव का चेहरा भावहीन था, पर उन गहरी आंखों में कई एहसास तैर रहे थे। मैं समझ गई, तुम फिजिकल चोट की बात नहीं कर रहे, इमोशनल डैमेज की बात कर रहे हो। जो चोट हमारे बदन पर लगती है वो वक्त के साथ भर जाती है, उसके निशान भी मिट जाते हैं, लेकिन जो जख्म दिल पर लगते हैं वो कभी नहीं भरते। कायरव फीका सा मुस्कुराया और वापस सर सामने की तरफ घुमाकर सोनी निगाहों से आसमान को देखने लगा। कायरव, ये निशान कब का है और यहाँ कैसे चोट लगी तुम्हें? काफी साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मुझे सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी, ये उसी का निशान है। अभी तक निशान गया नहीं, तुम तो इतने रिच हो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें स्कार मिटाए जा सकते हैं, फिर तुमने कुछ ट्राई क्यों नहीं किया? कायरव की निगाहें एकदम से इनाया की तरफ घूम गईं। क्योंकि इस निशान से मेरी कुछ अच्छी और कुछ बुरी यादें जुड़ी हैं जिन्हें मैं मिटाना नहीं चाहता, हमेशा याद रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने कभी ऐसी कोई कोशिश ही नहीं की। कैसी यादें, क्या तुम मुझसे शेयर कर सकते हो? इनाया बड़ी ही उम्मीद से उसे देखने लगी। कायरव की नजरें पल भर उसके चेहरे पर ठहरी, फिर उसने निगाहें फेरते हुए कहा, ये सब छोड़ो और ये बताओ, आज थोड़ी सी ड्रिंक करने की परमिशन मिलेगी? ड्रिंक क्यों करनी है तुम्हें, अभी तो तुम किसी पार्टी और बिजनेस मीटिंग में नहीं हो? इनाया चौंक गई। आज मूड है। तो अपने मूड को चेंज करो, कोई जरूरत नहीं है ड्रिंक करने की, चलो अंदर चले, कितना टाइम हो गया यहां बैठे बैठे, अब मच्छर भी काटने लगे, इनाया ने सख्ती से कहा और उठकर खड़ी हो गई। कायरव हल्के से मुस्कुराया और उसके साथ अंदर आ गया। मैंने पूछा पर इसने बात ही बदल दी, शायद ये मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहता था, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था, मुझे हमारे रिश्ते की हकीकत याद रखनी चाहिए थी, हम बस कुछ टाइम के लिए साथ हैं, फिर वो अपनी पर्सनल बातें मुझसे क्यों शेयर करेगा? लेकिन वो खुद ही तो कहता है कि ये शादी रियल है, हम नॉर्मल हस्बैंड वाइफ हैं, तो अगर मैं उसकी वाइफ हूँ और वो इस रिश्ते को मानता है तो मेरा राइट है उसके बारे में सब जानना, लेकिन उसने तो बताया ही नहीं, शायद बात ज्यादा सीरियस होगी, वो याद नहीं करना चाहता होगा। अपने ही ख्यालों में उलझी इनाया कब नींद की आगोश में चली गई, उसे खुद को इसका एहसास नहीं हुआ। कमरे में सन्नाटा सा पसरा था। कुछ देर बाद कायरव ने आंखें खोली और सर घुमाया। इनाया दोनों हाथों को अपने गाल के नीचे रखे उसके तरफ चेहरा करके लेटी हुई थी। उसकी पलकें झुकी थीं और माथे पर कुछ लकीरें उभरी हुई थीं। कायरव, तुम्हारे माथे पर ये निशान कैसा है? कभी चोट लगी थी क्या तुम्हें यहाँ? इनाया के शब्द कायरव के कानों में गूंजे। उंगलियां माथे पर मौजूद उस निशान पर ठहर गईं। नजरें इनाया पर टिकी थीं, पर दिमाग उन सालों पुरानी यादों में कहीं उलझा था। फ्लैशबैक। दादी सी, मैं क्या लेकर आया हूँ आपके लिए? कायरव ने खुशी से चिल्लाते हुए रायचंद मेंशन में कदम रखा। वो कायरव इस कायरव से थोड़ा अलग लग रहा था। उसके होंठों पर दिलकश मुस्कान बिखरी थी और आंखों में कुछ सपने झिलमिला रहे थे। राउंड नेक टी शर्ट के ऊपर से लेदर की जैकेट, जीन्स और बिखरे बाल में वो क्यूट सा चॉकलेट बॉय लग रहा था, जो हैंडसम के साथ बहुत क्यूट भी था। दादी इस वक्त ड्राइंग रूम में ही बैठी थी। कायरव के कदम उनके सामने आकर रुके। कायरव बेटा,
ये ट्रॉफी कहाँ से मिली आपको?
कहीं से मिली थोड़ी है दादी, ये ट्रॉफी तो आपके पोते ने जीती है। आपको पता है आज वॉइस ऑफ यूथ कॉम्पिटिशन का स्टेट लेवल फाइनल था और वो मैंने जीता है। उतने सारे पार्टिसिपेंट्स में मुझे ये ट्रॉफी मिली क्योंकि मुझ में टैलेंट है और मैं ये डिजर्व करता था। इस ट्रॉफी के साथ ही अब मेरी एंट्री फाइनल्स में हो गई है। अभी तो मैंने बस वॉइस ऑफ महाराष्ट्र की ट्रॉफी जीती है, मेरा टारगेट तो वॉइस ऑफ यूथ की ट्रॉफी अपने नाम करना है। उसके बाद सिंगिंग में मेरा करियर स्टार्ट हो जाएगा, मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। देखना, मैं मॉम डैड को प्रूव करके दिखाऊंगा कि सिंगिंग में मैं सिर्फ टाइम पास नहीं करता, फिर वो मुझे मेरे सपने को छोड़कर बिजनेस में घुसने के लिए फोर्स नहीं करेंगे और मैं वो करूंगा जो मैं हमेशा से करना चाहता था। कायरव काफी खुश और एक्साइटेड लग रहा था, उसने पूरी प्लानिंग उन्हें बता दी। दादी भी उसकी खुशी में शामिल हो गई, उन्होंने उस ट्रॉफी को छुआ और प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए उसके माथे को चूम लिया। खुश रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, अपने सपनों को साकार करो, हमारा नाम रोशन करो। कायरव की खुशी जैसे डबल हो गई, वो दादी के गले से लग गया। अगले ही पल एक सख्त रौबदार गुस्से भरी तेज आवाज वहां गूंजी, कहां थे तुम आज सारा दिन? डैड, कायरव के कांपते होंठों से धीमी सी आवाज निकली, सारी खुशी जैसे एक झटके में उससे छिन गई। कायरव दादी से दूर हुआ, डरते हुए नजरें आवाज की दिशा में घुमाई। गेट के पास मिस्टर रायचंद खड़े थे जिनका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था और घूरती निगाहें कायरव पर ही टिकी थी। अब चुप क्यों खड़े हो, जवाब क्यों नहीं देते? कहां थे तुम आज पूरे दिन? तुम्हारे प्रोफेसर ने मुझे कॉल किया, आज तुम्हारी प्रेजेंटेशन थी, पर लेकिन क्लास में गई ही नहीं। अगर कॉलेज नहीं गए थे तो कहां गए थे तुम? मिस्टर रायचंद गुस्से से चीखे, जिससे कायरव घबरा गया। उसने ट्रॉफी को अपने पीठ के पीछे छुपा लिया। वो डैड, वो मैं, कायरव की जुबान लड़खड़ाने लगी, शब्द जैसे बाहर आने को तैयार ही नहीं थे। मिस्टर रायचंद का गुस्सा अब सारी लिमिट्स क्रॉस कर गया। अब जुबान क्यों नहीं खुल रही तुम्हारी? अभी तो अपनी दादी को बहुत गर्व से अपनी जीत की कहानी सुना रहे थे, अपनी फ्यूचर प्लानिंग बता रहे थे, अब जब पूछ रहा हूँ तो जुबान क्यों लड़खड़ा रही है तुम्हारी? बताओ मुझे, अपनी क्लास और इतनी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन छोड़कर तुम कहां और क्यों गए थे? मिस्टर रायचंद कायरव के पास आ गए थे। उनके गुस्से में तमतमाए चेहरे को देखकर कायरव की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। ट्रॉफी पर उसकी ग्रिप टाइट हो गई। अगले ही पल मिस्टर रायचंद ने उसके हाथ से उस ट्रॉफी को छीन लिया, जिससे कायरव घबरा गया। क्या है ये, इसी में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो ना तुम? मेरे इतने समझाने के बाद भी सिंगिंग का फितूर उतरा नहीं है तुम्हारे सर से? डैड, कायरव ने कुछ कहना चाहा, पर मिस्टर रायचंद ने उसे मौका ही नहीं दिया।
इस मामूली सी ट्रॉफी के लिए तुमने आज अपनी इतनी इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन मिस कर दी। इतने टाइम से हमें झूठ बोल रहे हो, हमारे मना करने पर भी तुमने इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया और हमसे सब छुपाते रहे। आज मैं इस फसाद की जड़ ही खत्म कर दूंगा। मैं अभी तुम्हारे कॉलेज के डीन से बात करके तुम्हारा नाम उस कॉम्पिटिशन से हटा दूंगा। अब तुम किसी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। टू बी कंटिन्यूड।